मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 16 जुलाई 2018 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अनिल कुमार, आप बंधिया धाना मध्य प्रदेश से हैं, मनीष सिंह, आपका गांव है शक्तिनगर जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं, सोनू कुमार पांडे सिवान बिहार से हैं और निशा टियोटिया गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अनिल, मनीष, सोनू और निशा, आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत के बाद अब मैं बधाई देता हूं अपने उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की है। आपको मालूम है कि प्री एग्जामिनेशन जो जून में एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट आ चुके हैं। मेरे पास भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स की खबरें आई हैं कि उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो मित्रों, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और सच पूछे तो अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से न केवल अपने क्लास के स्टूडेंट्स को ही बल्कि समस्त उन विद्यार्थियों को जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है बहुत बहुत और बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हम सब मिलकर ईश्वर से आप सबकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और सच पूछिए तो आप सबसे यह अनुरोध भी करते हैं कि मित्रों, आप एक चरण पार कर चुके हैं, दूसरा चरण सबसे कठिन चरण है, इसलिए इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ लें, समय का अधिकतम इस्तेमाल करें लेकिन पूरे टेक्निक के साथ ताकि मेंस में भी आपको सफलता प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब मैं आज के मुख्य विषय के बारे में बताना चाहूंगा। आज मैं आपसे क्षमता निर्माण के बारे में बात करूंगा जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहा जाता है। आपको मालूम है कि सोमवार को जनरली अब हम लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि सीधे सीधे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो मैं आज आपसे कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लें। दो छोटी छोटी खबरें हैं। हालांकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्री के लिए ही है, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें एक तो आप बहुत अच्छे से जान ही रहे होंगे कि विश्व कप जो फुटबॉल है वो संपन्न हो चुका है, जो रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था और उसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा दिया। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया, तो आपको ये दोनों नाम याद रहने चाहिए। फ्रांस विजेता है और क्रोएशिया हारने वाला देश है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि अब कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि फ्रांस ने किसको हराया, तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये दोनों यूरोप के ही देश हैं और अगली जो प्रतियोगिता होगी वो कतर में होगी, जो अरब देश है और अरब देशों में पहली बार ये प्रतियोगिता होने जा रही है, वो होगी 2022 में। हर चार साल के बाद यह प्रतियोगिता होती है, राइट। तो ये एक छोटी सी खबर है, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक इसी के पैरेलल एक दूसरी और भी खबर है जो खेल से ही जुड़ी हुई है, विंबलडन टेनिस को लेकर। विंबलडन टेनिस में इस बार जो पुरुष सिंगल्स के जो विजेता बने हैं मित्रों, वो हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके पैटर्न में परिवर्तन किया गया है, तो कभी कभी देश के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच इनका नाम है और इन्होंने जो हराया है फाइनल में वो है दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन, राइट। ये दो छोटी छोटी खबरें हैं। एक न्यूज में जो बात थी, पहली न्यूज थी रेडियो की, वो हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट खासकर अधूरी परियोजनाओं को लेकर है। तो उन्होंने जो बात कही कि जो पहली सरकारें थी वो परियोजनाओं को अधूरा छोड़ देती थी, वो आरोप लगाया उन्होंने। खैर, हम आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाते, काफी कुछ सच्चाई भी होती है चीजों में, बहुत से रीजंस भी होते हैं। लेकिन यहां मैं आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक बात जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि आजादी के इतने साल हमारे हो चुके हैं और हम लगातार पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेहरू जी के समय में ही पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई थी, 5 ईयर्स प्लान। और हमने जो 5 ईयर्स प्लान का पैटर्न लिया था वो बेसिकली यूएसएसआर के आधार पर लिया था, रूस के आधार पर लिया था, सोवियत रूस, है ना, उन्होंने भी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी। मजेदार बात यह है कि रूस जब पंचवर्षीय योजना के काम में लगा तो 5 साल के अपने कामों को 4 साल में पूरा कर लेता था। और हमारे यहां इसके बिल्कुल उलट हुआ कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य होते थे वो पता लगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पूरे नहीं हो रहे हैं। ये हमारे यहां की सबसे बड़ी विडंबना रही। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सीधी सी बात है कि जब यह निर्धारित किया जाता है कि इस योजना को इस समय तक पूरा कर लिया जाएगा, मान लीजिए कि एक बांध बनाना है और यह बांध 5 साल में बनकर पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि ये प्लान ऐसे ही कर लिया जाता है, किसी के मन में आया और कह दिया गया नहीं 5 साल में पूरा हो जाएगा। बकायदे उसका रोड मैप होता है कि 1 साल में इतना काम होगा, 2 साल में इतना काम होगा, इसमें इतना पैसा लगेगा, उस पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं। तो ऐसी स्थिति के बावजूद अगर हमारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं तो वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है, ये सामान्य मामला नहीं है। क्योंकि योजनाओं के अधूरे होने से क्या होता है, विकास तो बाधित होता ही होता है, और साथ ही साथ क्या आप नई योजनाएं हाथ में नहीं ले सकते, दूसरा उसके जो लागत है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, उससे जो फायदा मिलना शुरू हो चुका होता वो फायदा हमारा पिछड़ जाता है। तो हमारे देश के विकास की जो धीमी गति जो हमें दिखाई दे रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी योजनाओं का समय पर पूरा न हो पाना। यह तथ्य आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर फ्रेंड्स, जो क्षमता निर्माण का विषय है, कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए, जब हम बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो ज्ञान से कैसे अलग है, यहां मैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं नो डाउट वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के संदर्भ में ही कर रहा हूं। ये बेसिकली है क्या, अक्सर आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे जब सिविल सर्विस तैयारी के बारे में कोई आर्टिकल लिखा जाता है, मैगजीन्स में भी पढ़ते होंगे, लोग कहते भी हैं, जिनसे भी आप सलाह लेने जाएंगे कैसे तैयारी करें, तो अक्सर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कही जाती है। दूसरे एग्जामिनेशन में उतनी जरूरत इसकी नहीं पड़ती है, स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे, लेकिन जो सिविल सर्विस यानी कि जो आईएएस का एग्जाम है उसमें तो यही सब कुछ है। तो इसका देखिए, एक पक्ष तो बिल्कुल ज्ञान का पक्ष है, यानी कि सिलेबस है और सिलेबस में डिटेल्स दिए हुए हैं और आप उसके आधार पर किताबें लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रटते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या जो भी आपकी अपने स्टाइल है उस तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। तो ये ज्ञान का क्षेत्र हो गया कि एक्वायरिंग द नॉलेज, वो तो जरूरी है, बिना नॉलेज के तो आप लिख करके क्या आएंगे। लेकिन सिविल सर्विस में यही पर्याप्त नहीं होता है और स्टूडेंट यही मैं कहना चाहूंगा कि फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमने तो सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, तैयारी भी अच्छी हो गई है, अब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है। एक कैपेसिटी बिल्डिंग है क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि जो ज्ञान आपने हासिल किया है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आप उन पढ़े हुए का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि जो पढ़ा हुआ है, जो रटा हुआ है, उसे ज्यों का त्यों लिख देना, बेसिकली वो नॉलेज को एक तरीके से कार्बन कॉपी कर देना है। लेकिन जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग है जब हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को इनफैक्ट कुछ नए तरीके से पेश करने के में सक्षम हो जाते हैं, और किस तरीके से, किस रूप में, जिस रूप में पूछा गया है, जिस रूप में हमसे एक्सपेक्ट किया गया है कि आप यह बात बताइए। मैं इसे एक उदाहरण के जरिए आपके सामने पेश करूं तो शायद आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 2017 का जो मेंस हुआ था, मैं मेंस के बारे में ही बात कर रहा हूं, प्री के बारे में तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए मेंस में जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पर एक क्वेश्चन आया था। मैंने जानबूझकर के हिस्ट्री का प्रश्न लिया है क्योंकि हिस्ट्री में लोगों को लगता है कि उसमें तो अगर रट लिया जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो अपनी तरफ से लिखने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, इसलिए मैंने हिस्ट्री का प्रश्न लिया है। लेटेस्ट है 2017 मेंस। अब उसमें देखिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। केवल 150 शब्दों में आपको लिखना है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। क्लेरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल इतिहास का प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत उलझा वाला भी प्रश्न नहीं है। और अगर आपने इतिहास की तैयारी कर ली होगी तो आप सोच करके देखिए, थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिए कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या थॉट्स पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इमर्ज हो रहे हैं, क्या इस प्रश्न को पढ़ते ही, और होना चाहिए पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अरे यार इसमें तो ये पूछा गया और मुझे ये लिखना है, क्योंकि आपके पास वहां वक्त नहीं है, आपके पास वहां बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मध्य 18वीं शताब्दी, 1850 अगर इसको आप सन में कह दे तो मध्य 18वीं शताब्दी 1750 सन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1750 के आसपास का समय हो जाएगा, राइट। सन 1750 का इंडिया आप दिमाग में लाइए। अब उसमें कह रहे हैं कि अगर भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था, यानी कि 1750 के आसपास की भारत की राजनीति, भारत का के राजनीतिक परिदृश्य को आपको समझना होगा कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। सीधी सी बात है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था 1750 तक आते आते, आपको मालूम है, और छोटे 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 सामंती शक्तियां इधर उधर स्थापित हो गई थी। एक तरफ मराठे आगे बढ़ने लगे थे, दूसरी तरफ और दूसरी शक्तियां, अब उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। आप पाएंगे कि छोटे छोटे इधर आपके अवध के नवाब अलग हो गए थे, तो बिहार बंगाल के नवाब अलग हो गए थे। देखा है कि आपने फिर अंग्रेजों ने आकर के इन्हीं को तो अलग अलग हराया है। यहां दिखाई क्या दे रहा है कि बाहर की शक्तियां आई और उन्होंने अलग अलग राजाओं को पराजित करके धीरे धीरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। अगर ये विखंडित शक्तियां नहीं होती या उस समय मुगल साम्राज्य उतना ही शक्तिशाली रहा होता तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज भारत को जीत नहीं पाते। तो अब आपको केवल नाम भर याद रखने कि उस समय कौन कौन से ऐसे छोटी छोटी शक्तियां थी जो भारत को एक प्रकार से कमजोर कर रही थी। दिखा रहे विखंडित राजतंत्र, डेमोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं है, सभी जगह राजतंत्र ही थे, तो ये राजतंत्र शब्द से आपको उलझना नहीं है। तब आप देखिए कि किस क्यों इस प्रश्न का उत्तर आपको देते हुए नहीं बनेगा, बड़े आराम से आप दे लेंगे, और 150 शब्द तो लिखने ही है, इसमें लिखना कितना है, कोई आपको थीसिस नहीं लिखनी है। अब सवाल जो यहां है तो कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड कि यह इस तरह की बातें दिमाग में आए कैसे, ये थॉट्स कैसे क्रिएट हो कि हम फटाफट उसके उत्तर देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो जाए, कलम उठाए और लिखना शुरू कर दे। मित्रों यही इसे ही कहा जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग। जब आप विषय को समझते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, सोचने लगते हैं, विषय से हट करके भी जब आप उसी उन्हीं विषयों की कुछ दूसरी किताबों को भी पढ़ते हैं, तब फिर धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी उसी तरह से बिल्डिंग बनती चली जाती है। मित्रों जैसे समुद्र में या नदी में पानी आता कहां से है, बरसात के दिनों में ही इनमें पानी ज्यादा दिखाई देता है आपको, नदियों में खासकर पानी आता क्या कहां से, क्या सिर्फ बरसात का पानी, बरसने वाला पानी नदियों में आता है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, बरसने वाले पानी की मात्रा कितनी हो सकती है, नहीं, नदियों में जो पानी आता है वो बहकर आता है, अलग अलग स्रोत से आकर के वो पानी नदियों में उलीचा जाता है और फिर नदियों में बाढ़ आती है, तो ये नदी की कैपेसिटी बनती है। तो ठीक इसी तरह से हम सिर्फ पढ़ पढ़ करके अपनी कैपेसिटी को उस तरह की बरसाती नदी नहीं बना सकते, हमें उसमें कई तरीके से चीजें शामिल करनी पड़ेंगी, तब वास्तविक अर्थ में हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाती है। तो मित्रों ये कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कुछ बातें थी। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सूर्य प्रकाश, मनोज कुमार शर्मा कटघोरा छत्तीसगढ़ से, नवीन कुमार, जितिन वर्मा करौली राजस्थान से, सचिन अडगांवकर, सुशील पांडे और रूपेश शर्मा। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।